राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा
राधा माधव कुंज बिहारी,
जय 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 राधा
राधा माधव कुंज बिहारे।
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
शोदानंदन ब्रज जन रंजना,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजना,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजना,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजना,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
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 यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
य
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे
भजो 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 मन पांडुरंग विठला,
भजो 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 मन पांडुरंग विठला,
भजो 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 मन पांडुरंग विठला,
भजो
पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग
विठला
पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला भजो भजो मन पांडुरंग विठला
भजो भजो मन
पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला भजो
सभी लोग सब लोग आइए
पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो भजो
भजो भजो भजो मन पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मना
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला
सभी लोग सब लोग
पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग
विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला हा भजो भजो हा भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला हा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हा विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो भजो हा भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर
जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे
जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे
जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
जय जगन्नाथ जगन्नाथ
जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय
गौरनिताय
जय जय प्रभुपाद 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 हाँ प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की
जय
श्री श्री गौर निताय की
जय
श्रील प्रभुपाद की
जय
निताय गौर प्रमानंद
हरि हरि बोल
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओ oh.
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके
श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 6 से प्रारंभ करेंगे।
ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान्मो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसूद्विभासि त्वदत्यया वयुनये दमचष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भगवन् प्रपन्न तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवमांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत् पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणाप्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूरतेर्महत भी यैमा पुरो विभू निर्मायशेते यतमूष पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रषषोडशात्मक सोलङ्क श्रेष्ठ आन्वचांसि मे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः
हरे कृष्ण तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति रविवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रति रविवार को हम यहां पर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह भागवत कथा बहुत सुहावनी है। सभी भक्तों को सभी वैष्णवों को भागवत कथा, भागवत का अर्थ होता है भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। समस्त भक्त एवं वैष्णवों को यह कथा बहुत ही सुंदर लगती है। सब लोग इसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और वैष्णवों में भी जो शिरमोर है वैष्णवा नाम यथाशंभु। हमारे नलिन प्रभु शिव जी की कथा कह रहे थे,
तो उससे याद आ रहा है। वैष्णव को तो भागवत कथा अच्छी लगती ही है, परंतु वैष्णवों में भी जो शिरमोर शिव जी है उसे यह कथा बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, कितनी अच्छी लगती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अतिथि पूज प्रियतम त्रिपुरारी के, अतिथि पूज प्रियतम त्रिपुरारी के, काम दधन दारी ददावरी के। अतिथि पूज्य प्रियतम त्रिपुरारी के, भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी भी है। त्रिपुर नाम के असुर का वध किया इसलिए शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाता है। त्रिपुर अरि, अरि का रहता है शत्रु, जो त्रिपुर के शत्रु है उसे त्रिपुरारी कहते हैं। त्रिपुरारी शिव जी को जो सबसे बड़े वैष्णव है उसे यह कथा कितनी पूज्य लगती है। कहते हैं अतिथि पूज्य, अतिथि जितने पूज्य होते हैं उतनी पूज्य यह भागवत कथा शिव जी को लगती है। अब अतिथि कितने पूज्य है हम क्या जाने, हम अतिथि की कितनी पूजा करते हैं हम जानते हैं। अतिथि घर पर आते हैं तो उसकी कितनी सेवा करते हैं, कितना सत्कार करते हैं। वास्तव में अतिथि की कैसे पूजा करनी चाहिए ये शिव जी जानते हैं। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। वेदों में कहा गया है अतिथि का अर्थ क्या होता है, अतिथि का अर्थ है दूरागतम परिश्रांतम वैष्णव देव उपस्थितम अतिथिम तम विजानियात न अतिथि पूर्व महागत। जो बहुत दूर से आया हो, चल करके थक करके आया हो, और वैश्व देव भगवान से भी पूजनीय हो और बिना तिथि बताए घर पर आया हो उसे अतिथि कहते हैं। ऐसे अतिथि की हमें सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अतिथि की सेवा और पूजा नहीं करते हैं, यदि कोई अतिथि को प्रसन्न नहीं कर सकता है तो भगवान कहते हैं, अतिथि यस्य भग्न नाशो गेहात प्रति निवर्तते। यदि अतिथि किसी के घर से असंतुष्ट होकर जाता है, असंतुष्ट होकर किसी के घर से निकलता है तो सदत्वा दुष्कृतम तस्मे, तो उस घर पे रहने वाले लोगों को दुष्कृतम अपना सारा पाप छोड़कर जाता है। वे रह कर नहीं जाता है, वह छूट ही जाता है, उस अतिथि का सारा पाप उस घर में रहने वाले को आ जाता है। और इतना ही नहीं, पुण्य मादाय गच्छति, वह अतिथि जिसके घर पे अतिथि बनकर आया है उसका सारा पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए ध्यान रहे अतिथि की पूजा सेवा सत्कार करना चाहिए। एक जगह तो यहां तक कहा गया है, सत्यम तथा तपो अधितम, जीवन में कितना भी बड़ा तप करो, पूरा जीवन तपस्या करके तपा दो, दष्ट मिष्टम शतम तपा, सैकड़ों वर्षों तक तप करो, परंतु अतिथि को यदि आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो तो जितना भी तप जितना भी ध्यान है यह सब विफल चला जाए। और भागवत में के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े कौवे, गीध उसे नोचते हैं, उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। तो यह कुल मिलाकर अतिथि की सेवा करनी चाहिए। और अतिथि की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए ये वैष्णव जानते हैं, और वैष्णवों में भी शिरमोर शिव जी जानते हैं कि अतिथि की कितनी सेवा करनी चाहिए, अतिथि कितना पूज्य है। तो अतिथि जितना पूज्य है उससे भी करोड़ों गुना पूज्य भगवान की यह कथा है, अतिथि पूज्य प्रियतम त्रिपुरारी के और कामद धन दरित दावरी के। और जो दरिद्र है दरिद्रों के लिए यह भागवत कथा धन देने वाली है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनता है तो व्यक्ति धनी बन जाता है। धन दो प्रकार का होता है, भौतिक धन और आध्यात्मिक धन। भौतिक धन अर्थात यह नोट पैसे इत्यादि, भागवत सुनने से धन मिलता है, यह सत्य बात है। जिसकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं यही सबसे बड़ा ज्वलंत प्रमाण है। ध्रुव महाराज एक से एक व्यक्ति ने भजन किया है उसे और उसे धन मिला है कामद। कुछ लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करने वाले फक्कड़ बाबा बन जाते हैं, उसके पास धन नहीं रहता इसलिए सोचते हैं भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति करेंगे तो दर दर भटकते रहेंगे। परंतु भगवान ने दिखा दिया भजन करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता है। भजन करने वाले सुदामा हो गए, भगवान ने अपने जैसी द्वारका दे दी। ध्रुव महाराज क्या चाहिए था, पिताजी के गोद में बैठना था, परंतु भगवान ने 30,000 वर्ष एक छत्र राज्य दिया और मृत्यु के बाद ध्रुव लोक ही दे दिया। एक से एक भगवान की कोई थोड़ी भी भक्ति करता है तो भगवान उसे अपने धाम में बुला लेते हैं, अपने जैसा रूप दे देते हैं, चतुर्भुज पार्षद बना देते हैं। भगवान क्या नहीं देते हैं संसार में, यदि भौतिक धन की इच्छा है तो भौतिक धन भी देते हैं हमारे नीलेश ठक्कर नहीं है। इस्कॉन से जुड़ने से पहले एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन भजन में आने के बाद, भक्ति में आने के बाद, भागवत कथा सुनने के बाद आज 3 सिस्टर कंसल खोल कर रखे हैं। खैर तो ये तो भौतिक धन है, वास्तव में ये भौतिक धन तो इस संसार में मृत्यु तक काम में आता है, परंतु मरने के बाद तो ये भौतिक धन को यहाँ पर ही छोड़कर जाना। वास्तविक धन तो है भगवान के प्रति प्रेम, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो वास्तविक धन इस पृथ्वी का धन नहीं, स्वर्ग लोक तप लोक का नहीं, ये गोलोक का धन है। यदि कोई भागवत कथा सुनता है तो गोलोक के इस प्रेम धन को प्राप्त करता है। प्रेम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है भागवत सुनने से, क्योंकि भागवत में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है और यह कथा अपने आप में पवित्र है। और इस कथा में ऐसी ऐसी बातें हैं, यदि इसे हमारे जीवन में उतारा जाए तो हमारा जीवन बहुत उज्ज्वल बन सकता है। तो यह भागवत कथा शिवजी जैसे अतिथि की पूजा करते हैं इतनी पूज्य है और दरिद्रों के लिए धन देने वाली है। तो ऐसी पवित्र भागवत कथा का हम प्रति रविवार को यहाँ पर श्रवण करते हैं। इसके पीछे एकमात्र ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा है, जिनकी विशेष अनुकंपा से इस संसार में लाखों लाखों जीव इस दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके ये दुर्लभ भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हम भी प्रभुपाद जी की कृपा के अंतर्गत हैं, तो आइए प्रभुपाद जी की इस कृपा का हम लाभ उठाएं। भागवत के चतुर स्कंद के 9वें अध्याय की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना कि ध्रुव महाराज 6 महीना तपस्या किए, सबको याद है किस प्रकार से तपस्या किए। पहले महीने में 3 दिन में 1 बार सूखे पत्ते और कौन सा फल, बेर बेर का बेर फल खाकर। दूसरे महीने में 6 दिन में 1 बार सूखे पत्ते खाकर। तीसरे महीने में 9 दिन में 1 बार केवल पानी पीकर। चौथे महीने में 12 दिन में 1 बार केवल हवा रहकर। पांचवें महीने में ध्रुव महाराज ने हवा लेना भी बंद कर दिया और छठे महीने में ध्रुव महाराज ने भगवान के रूप को अपने हृदय में बिठा लिया और भगवान से एक की भावना जब करना प्रारंभ किए, ध्रुव महाराज ने सांस लेना भी बंद कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप गया। आपने सुना जैसे नाव में किसी हाथी को खड़ा रखा जाए और वह नाव डोलने लगती है, वैसे ध्रुव महाराज की सांस बंद करते हुए यह पृथ्वी डोलने लगी, यह ब्रह्मांड कांप गया, ब्रह्मांड के सारे जीव व्याकुल होने लगे क्योंकि सांस निकलनी बंद हो गई। सब लोग हरिम शरणम ययु, सब लोग दौड़कर भगवान विष्णु के शरण में गए। प्रभु प्रभु यदि अभी थोड़ी देर भी हवा बहनी शुरू नहीं हुई तो हम सब लोग मर जाएंगे, आप कुछ कीजिए। प्रभु यह तो बताओ कि ये कार्य है किसका, किस असुर ने इस प्रकार से हवा को बहाना बंद कर दिया है? ऐसा प्रबल ऐसा शक्तिवान व्यक्ति कौन इस संसार में आया है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, ये कोई बड़े व्यक्ति का इसके पीछे हाथ नहीं है। एक 5 साल का बालक मेरी भक्ति कर रहा है और उस 5 साल के बालक की भक्ति के प्रभाव के कारण तुम सब लोग आकुल व्याकुल हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उसके पास जाता हूं और जाकर ये सब ठीक कर देता हूं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान उरुक्रम, भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के पास आते हैं। ध्रुव महाराज के पास आकर खड़े रह जाते हैं, परंतु ध्रुव महाराज तो अपने उस अंतर के रूप में एक निष्ठ थे, ध्यान में थे। भगवान विष्णु ने उस रूप को जो बंद कर दिया, ध्रुव महाराज की आंखें खुली, भगवान विष्णु का दर्शन किया। और दर्शन करके ध्रुव महाराज ने सबसे पहले क्या किया? दृग्व्याम प्रपशन प्रपिबन, प्रकृष्ट रूपेण ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के रूप को अपनी आंख के माध्यम से पीने लगे। जैसे कई वर्षों से प्यासा व्यक्ति को पानी मिल जाए तो घट 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 करके पी जाता है, ऐसे ध्रुव महाराज भगवान के रूप को आंखों के द्वारा पीने लगे। पहले भगवान के रूप को देखा, फिर रूप को देखकर भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर से ध्रुव महाराज खड़े हुए और खड़े होकर भगवान को देख रहे हैं। ध्रुव महाराज के मन में इच्छा हुई कि अब भगवान की स्तुति की जाए, भगवान को प्रार्थना की जाए, परंतु बेचारे एक श्लोक का एक शब्द भी नहीं जानते थे। नमो ओम नमो विष्णु पादाय भी ध्रुव महाराज को नहीं आता था। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जान गए कि भक्त मेरी प्रार्थना करना चाहता है। भगवान ने अपना शंख, 5 जन्य शंख ध्रुव महाराज की गाल से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही ध्रुव महाराज के हृदय में समस्त वेदों की वाचा प्रकट हो गई। वह शंख कपोल से स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज को समस्त वेद और शास्त्र का ज्ञान हृदय में स्फुरित हो गया और ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। भागवत के एक महान टीकाकार, सर्वप्रथम टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने 12 श्लोक में भगवान को प्रार्थना की है और यह 12 श्लोक 12 आदित्य के समान, 12 सूर्य के तप समान चमक रहे हैं। और इस 12 श्लोकों में संपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, शास्त्र के सिद्धांत को बिल्कुल 12 श्लोक में ध्रुव महाराज ने कह दिया। अब देखिए, किसी भी वेद को पढ़ने के लिए, अब भगवान ने शास्त्र का निर्माण किया है पढ़ने के लिए, और वेदों को यदि पढ़ना हो तो उसके लिए कितना समय चाहिए? गीता कोर्स में सब आता है, मैंने कहा था आज गीता कोर्स ही है। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यथर्वेद, अजुर्वेद, और उसमें भी कई कई भाग है, उसमें भी कितने ब्राह्मण, हिरण्यक, संहित, उपनिषद, बहुत बहुत चैप्टर। यदि ये चारों वेदों को पढ़ना है तो हम 10 जन्म भी ले ले फिर भी ये चारों वेदों को हम नहीं पढ़ सकते। 10 जन्म के बाद भी यदि 10 जन्म भी मिल जाए तो ये चारों वेद पढ़ने के लिए संस्कृत चाहिए और वह अलौकिक संस्कृत में वेद लिखे। तो यदि वेदों का ज्ञान हमें चाहिए तो किसी भी भक्तों को चाहिए कि ये ध्रुव महाराज की प्रार्थना सुन ले। ध्रुव महाराज समस्त वेदों का ज्ञान हो चुका है और वेदों के सार के रूप में भगवान की स्तुति करते हैं और यह 12 श्लोक समस्त वेदों का सार है। वास्तव में स्तुतियों में समस्त वेदों का सार, शास्त्रों का सार और कथा का सार दिया जाता है। कई बार हम सब लोग कथा सुनते हैं, लीला सुनते हैं, तो लीला और कथा सुनना सब लोग चाहते हैं, सब लोग की इच्छा होती है हम कथा और लीला सुनें, परंतु लोग स्तुति सुनना नहीं चाहते हैं। क्या स्तुति सुनना, क्योंकि स्तुति में कोई कथा, स्तुति में सिद्धांत होता है। थोड़ा जटिल विषय है, परंतु सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत वलिया चित न करे आलस। सिद्धांत जानने में कभी आलस नहीं करनी चाहिए, सुदृढ़ होकर यह सिद्धांत जानना चाहिए। तो प्रार्थनाओं में, वैसे तो शास्त्रों में, भागवत में बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। महारानी कुंती की प्रार्थना, पितामह भीष्म की प्रार्थना, वृत्रासुर की प्रार्थना, गजेंद्र की प्रार्थना, कालिया की पत्नी, कालियाना की पत्नी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना, बहुत बहुत प्रार्थना शास्त्रों में है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ये जो प्रार्थना है ध्रुव महाराज की, यह प्रार्थना वेदों का सार है और इसमें बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। तो आइए, ध्रुव महाराज क्या प्रार्थना करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं। श्री ध्रुव उवाच, ध्रुव महाराज ने कहा। अब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं। अब देखिए ध्रुव महाराज के मुख से कैसा कैसे शब्द निकल रहे हैं, कैसा ज्ञान। 5 साल का बालक है, कभी भी स्कूल में क ख ग घ पढ़ने भी नहीं गए हैं। क्योंकि व्यक्ति स्कूल में एडमिशन तब होता है जब 5 साल का हो जाता है, तब जाकर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है। पहले सीनियर केजी, जूनियर केजी पहले नहीं था। तो ध्रुव महाराज थोड़े भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन देखिए भगवान के उस शंख का प्रभाव, भगवान का शंख स्पर्श हुआ और ध्रुव महाराज ने प्रार्थना प्रारंभ की। प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसूक्ताम संजीव यत्य खिल शक्ति धर स्वधामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज सबसे पहले कहते हैं, यह अंतः प्रविश्य मम। हे प्रभु, हे भगवंत, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो यह अंतः प्रविश्य मम, जो मेरे हृदय में, मेरे शरीर में प्रवेश हुए हैं। तो क्या भगवान पहले से प्रवेश नहीं किए थे? ध्रुव महाराज सबसे पहले कहते हैं, अब देखिए थोड़ा जटिल विषय है, इस थोड़ा बुद्धि लगाना होगा। देखिए शास्त्रों में ये जो स्तुति जो होती है, ये कथा के अंत में दी जाती है। किसी भी कथा को आप ले लीजिए, कथा के अंत में स्तुति जरूर होगी। क्यों पहले स्तुति नहीं देते हैं, अंत में देते हैं? स्तुति अंत में इसलिए होती है तो क्या, क्योंकि कथा सुन सुनकर, सुनते 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 हृदय पवित्र हो जाता है और हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं और तब जाकर यह स्तुति उसमें फिट होती है। तो मैं आशा करता हूं कि कथा सुनकर आप सब लोग का चित, मन और बुद्धि की खिड़की खुल गई होगी। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि यो अंतः प्रविष्टम मम। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश हुए हो। तो प्रश्न होता है, क्या भगवान ध्रुव महाराज के अंतःकरण में नहीं थे? भगवान तो सभी के हृदय में है, परंतु ध्रुव महाराज के कहने का भाव यह है कि प्रभु, आप पहले से मेरे हृदय में हो ही, परंतु अभी जो आप प्रविष्ट हुए हो कुछ विशेष चीज, क्योंकि पहले भी थे आप, परंतु पहले मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता था, परंतु अब मैं आपकी स्तुति कर सकता हूं क्योंकि आप मेरे हृदय में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है कि भगवान तो सबके हृदय में है और सबके हृदय में बैठकर मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान सबको स्मृति देते हैं और ज्ञान देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। भगवान सबके हृदय में है, परंतु यदि कोई भगवान का भजन करे तो हृदय में बैठे हुए भगवान उसे स्मृति शक्ति देते हैं, उसे वेद और शास्त्रों का ज्ञान स्फुरित करते हैं। और यदि कोई भगवान का भजन नहीं करता है तो भगवान तो बैठे ही हैं, परंतु उस व्यक्ति को हेल्प नहीं करते हैं। यदि हृदय में बैठे हुए भगवान से हेल्प चाहते हो, उस भगवान की कृपा चाहते हैं, तो उस भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की भक्ति करके भगवान हमें वेद और शास्त्रों का ज्ञान हृदय से स्फुरित करते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर होता है कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं, कि यो अंत प्रविष्टम, आप मेरे अंतकरण में प्रवेश किए हो। तो भगवान ध्रुव महाराज के अंतकरण में प्रवेश हो गए तो क्या ध्रुव महाराज का शरीर बहुत बड़ा हो गया? भगवान तो विभू है। नहीं, भगवान ध्रुव महाराज के हृदय में प्रवेश हुए हैं, परंतु ध्रुव महाराज का शरीर तो वैसा ही रहा। दृष्टांत देते हैं आचार्य गण, जैसे मान लीजिए कोई टीवी है, टीवी हमारे घर पर, और वह टीवी बिगड़ गया। अर्थात टीवी में जो चैनलें आती हैं, एम टीवी या जी टीवी या सोनी टीवी जो भी है, वे चित्र आना बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस टीवी को लेकर दुकान में जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, और दुकान वाला 5-6-10 दिन उसे रखता है और रिपेयर करके हमें वापस दे देता है। और वापस जब हम लाते हैं घर पर तो बहुत सुंदर चित्र और सब देखने को मिलता है। तो पहले उस टीवी में चित्र नहीं आया था और बाद में उसमें चित्र आने लगा। तो चित्र जब आने लगा तो क्या टीवी की साइज बढ़ गई? क्या उस रिपेयर करने वाले ने टीवी में इतना बड़ा चीज डाल दिया जिससे टीवी में यह रूप आने लगा? नहीं, साइज नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी वह रूप आने लगा। ठीक उसी प्रकार ये जो भगवान का रूप है, भगवान का दर्शन, भगवान का तत्व हमारे हृदय में स्फुरित होगा जब उसको, इस हृदय को रिपेयर किया जाए। और इस हृदय को रिपेयर किया जा सकता है हरे कृष्ण महामंत्र से। महामंत्र के द्वारा जब महामंत्र लेते लेते हम भजन करेंगे और भजन के द्वारा भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे, उनका रूप हमारे सामने आ सकता है। संसार के प्राय लोग कहते हैं भगवान का कोई रूप है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। देखते हैं ना टीवी में कभी कभी झरमर 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 आता है, रूप नहीं पकड़ सकता है टीवी, चैनल नहीं पकड़ सकता है, तो क्या होता है, झरमर झरमर आता है। तो प्राय संसार के लोगों का टीवी बिगड़ा हुआ है, प्राय झरमर झरमर ही आता है। कुछ लोग तो यह नहीं जानते कि मेरा टीवी बिगड़ गया है, कुछ लोग यह सोचते हैं कि इसमें कोई रूप है ही नहीं, और कुछ लोग जानते हैं कि नहीं बिगड़ा हुआ है, नहीं हम में ही कुछ कमी है, और कुछ लोग जानते हैं बिगड़ा हुआ है और रिपेयर करा चुके हैं। आप लोगों की तरह रूप को पकड़ रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो रूप नहीं आ रहा है इसलिए इसमें कुछ है ही नहीं, रूप है ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से भगवान जब अंतर में प्रविष्ट होते हैं तो हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं यो अंत प्रविष्ट मम, वे भगवान आप मुझ में प्रवेश करके क्या किए? अखिल शक्ति धर, कहते हैं भगवान आप कैसे हो? भगवान को अखिल शक्ति धर कहा जा रहा है। भगवान श्री विष्णु अखिल शक्ति धर है, अखिल अर्थात समस्त, अखिला शक्ति ही धार इति अखिल शक्ति। भगवान समस्त शक्ति के धर है। इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं भगवान से आती है। बाहर की बात छोड़ दीजिए, हमारे शरीर की शक्ति, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। हम इस शरीर के आंख के द्वारा हम देखते हैं, तो यह देखने की शक्ति कहां से आती है? कहते प्रभु आपसे आती है। कान को सुनने की शक्ति कहां से आती है? भगवान से आती है। यह त्वचा को स्पर्श करने की शक्ति कहां से है? भगवान से। जीवा टेस्ट करने की शक्ति भगवान से आती है। चलने की शक्ति, हाथ हिलाने की शक्ति, भोजन खाते हैं उसे पचाने की शक्ति, ये सारी शक्ति भगवान से आती है। भगवान ही इस शक्ति का संचार करते हैं। यद्यपि ये दिखता नहीं है परंतु देते हैं भगवान। बाहर से लगता है कि ये बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत सुंदर आंखें हैं, परंतु जब तक भगवान इसे शक्ति न दे तब तक ये चलता नहीं है। कितना भी सुंदर माइक है, कितना भी सुंदर टीवी है, कितना भी सुंदर फ्रिज है, कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा एसी है, परंतु यदि इलेक्ट्रिसिटी न है तो कितना भी बड़ा और अच्छा हो ये कुछ काम का नहीं है। वैसे ही कितना ही अच्छा रूप हो, कितना ही अच्छा शरीर हो, भगवान यदि शक्ति न दे तो वह कुछ काम नहीं कर सकता है। तो अखिल शक्ति धर, भगवान विष्णु अखिल शक्ति समस्त शक्ति के को देने वाले हैं। और आगे कहते हैं इमान प्रसुप्तम वाचम, हे प्रभु आप अखिल शक्तिधर हो और अखिल शक्तिधर आप मेरे अंतकरण में जब प्रविष्ट हुए और अंतकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी वाणी को जगा दी। इमाम प्रसुप्तम वाचम, मेरी जो वाणी थी सोई हुई थी। प्रसुप्तम प्रकृष्ट रूपेण सुप्त, सोई हुई थी परंतु आपने मेरी वाणी को जगा दिया। वाणी को जगाना अर्थात ध्रुव महाराज अपनी वाणी से भगवान को स्तुति नहीं कर सकते थे, परंतु कहते हैं कि आप जैसे ही मेरे हृदय में आए, भजन के द्वारा भक्ति के द्वारा जैसे ही मेरे हृदय में आए तो आपने मेरी वाणी को जगा दिया। वास्तव में हमारी वाणी, हम सब में भगवान की स्तुति करने की शक्ति है, हम सब में ये वाणी, ये भाव और भाषा है, परंतु अभी फिलहाल सुप्त अवस्था में है। ध्रुव महाराज ऐसा नहीं कर रहे कि मेरे पास वाणी ही नहीं थी, वाणी तो सबके पास है, सब लोग बोल सकते हैं, फिल्म के गीत गाने तो कितना अच्छा गाते हैं, ट्रेन के विंडो पर खड़े खड़े, गेट के ऊपर खड़े खड़े कितना सुंदर गाते हैं, परंतु भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो वाणी है परंतु सोई हुई अवस्था में, सुप्त है। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो यह सोई हुई वाणी जग सकती है। वास्तव में आत्मा में, हृदय में ज्ञान है, ज्ञान बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। यह आत्मा सत चित आनंद है, आत्मा सत और चित, संपूर्ण ज्ञान आत्मा में है क्योंकि परमात्मा का अंश है, परंतु यह ज्ञान सो गया है सुप्त अवस्था में। भगवान की कृपा यदि हो जाए, भक्ति के द्वारा यदि भगवान को हृदय में ग्रहण किया जाए, तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत मेहनत और प्रयास करके भगवान का भजन किया जाए, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, ज्ञान मैं देता हूं उसे। तो प्रभु मेरी वाणी सोई हुई थी परंतु आपने मेरी वाणी को जगा दिया। मैं सोया हुआ था परंतु आपने मुझे जगा दिया। प्रभु आगे कहते हैं कि प्राणान, मेरी समस्त इंद्रिया सोई हुई थी, ये हाथ पांव सब कुछ सोए हुए थे, परंतु प्रभु आपने मेरे अंतकरण में प्रविष्ट होकर मुझे जगा दिया। तो यहां सोने का अर्थ क्या है, जीव का सोने का अर्थ क्या है? सोने का अर्थ एक तो वह है जो हम रात को सोते हैं। ऑलरेडी जीव रात को कितना सोता है, मान लीजिए 24 घंटे का दिन है तो 8 घंटा हम सोते हैं। यदि 8 घंटा अर्थात 25-35-30% हम सोते हैं। यदि 90 साल का हमारा जीवन है तो 30 साल तो हम ऐसे ही सोते हैं जो हमें दिख रहा है। तो ये हुआ सोना, ये हुआ जो आंखों से दिख रहा है। और सोने का दूसरा अर्थ क्या है, सोने का दूसरा अर्थ है जीव जितना समय तक भगवान और आत्मा के बारे में नहीं जानता है तब तक वह सोता रहता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति जब सोता है तो वह स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में भी वह क्या देखता है, स्वप्न में भी वह अपने ही शरीर को देखता है, लेकिन स्वप्न में उसका शरीर कुछ अलग होता है, कभी चिड़िया के रूप में, कभी कोई बड़ा मालिक सेठ बन जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो स्वप्न में भी शरीर है परंतु वह शरीर गलत शरीर है, सही पहचान नहीं है उसकी। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी उस जीव की, उस व्यक्ति की सही पहचान नहीं है, ये समीर नहीं है, परंतु व्यक्ति मान बैठा है मैं समीर हूं। क्या ये समीर है? नहीं। अब देखिए, स्वप्न में व्यक्ति अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मानता है, ठीक है, वह देख रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं बहुत वहीवट कर रहा हूं। तो किसी को पूछा जाए ये प्राइम मिनिस्टर है, था वो प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है, ये तो किसी खोली का भी मालिक जहां पर रहता है वो भाड़े पर रहता है, तो माना जाएगा कि वह स्वप्न देख रहा है क्योंकि वह है नहीं और वह अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मान रहा है, तो इसका अर्थ है वह स्वप्न देख रहा है। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी आपको पूछा जाए आप कौन हो और आप कहो कि मैं समीर हूं, मैं अमित हूं, तो क्या यह सही है? यह सही उत्तर है? तो इसका अर्थ हुआ कि यह जागृत में भी सो रहे हैं, चल रहे हैं, आंखें खुली हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते करते भी वह सोए हुए हैं, क्योंकि वह अपनी सही पहचान में स्थित नहीं है। भक्तों इसे सिद्धांत कहा जाता है। कुछ लोगों को नींद आ रही है। अभी मैं लाल गोविंद प्रभु नहीं हूं, मेरे शरीर में कमलोचन प्रभु आए हैं, इसलिए लीला नहीं मिलेगी आपको। कमल लोचन प्रभु की आत्मा बोल रही है। तो जागृत अवस्था में भी हम हमारी सही पहचान को नहीं पहचान सकते हैं, हम हमारी सही पहचान को भूल गए हैं, इसलिए जागृत अवस्था में भी हम सोए हुए हैं। तो जागृत में जो सोए हैं उसे उठाने की बात यहां पर की गई है। ठाकुर भक्ति विनोद इसी चीज को कहते हैं, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले रे, जीव
जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले रे,
जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले रे,
जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले रे,
को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, को तो निद्रा
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर आए हैं और संसार के लोगों को कह रहे हैं कि हे जीव जागो जागो उठो। रात को सोए हुए जीव को तो जगा ही रहे हैं, परंतु दोपहर में जो जीव चल रहे हैं उसे कह रहे हैं कि उठो जीव उठो। मैं स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भक्त बनकर आया हूँ आप सबको उठाने के लिए। कतो निद्र, कब तक तुम निद्रा में पड़े रहोगे? निद्रा क्या है? महाप्रभु कहते हैं कि यह निद्रा माया रूपी निद्रा। कब तक माया रूपी निद्रा के कोले अर्थात गोद में सोए रहोगे? जैसे हम रात को सोते हैं तो तकिए के ऊपर सोते हैं, या अपनी माता के गोद में सोते हैं, या कुछ लोग अपनी पत्नी के गोद में सोते होंगे, परंतु वास्तव में जीव माया के गोद में सोया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कब तक माया के गोद में सोए रहो।
भजी बो बोलिया ऐसे संसार बीतरे, भजी बो बोलिया रो विचार भरे, बोली हिल तुम्हें,
जीव जागो है जीव, कब तक इस संसार में पड़े रहोगे? जागो, भगवान का भजन करो और भजन करके इस संसार को छोड़कर भगवान को प्राप्त करो।
तो मारे लो ते आमी होइनु अवतार, तो मारे
आपके लिए मैंने अवतार लिया है।
आमी बिना बंधुकार के आछे तो मार,
मेरे बिना इस संसार में आपका बंधु आपका मित्र कौन है? वो देखिए, आपका घनिष्ठ मित्र हूं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप जाग जाओ।
एनजी औषधि माया नाशी बारे लागी,
मित्रों मुझे पता है कि आप सब लोगों को रोग लगा है, और यह माया रूपी रोग है। मैं आपका मित्र हूं, इसलिए इस रोग को दूर करने के लिए औषधि लेकर आया हूं। तो वो औषधि क्या है?
हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी।
हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें
मागी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
हे मित्रों, आपके लिए मैं आया हूं और औषधि लेकर आया हूं, और यह औषधि है हरिनाम महामंत्र। हरिनाम महामंत्र रूपी औषधि ले लो, और लेकर आप जो सोए हुए हो, यह जो माया रूपी रोग लगा है, इसे दूर हो जाओ। वास्तव में जब व्यक्ति सोता है, अब आ जाइए वापस, ध्रुव महाराज ने कहा कि आपने मुझे जगा दिया, उठा दिया, तो आपने मुझे जगा दिया, इसका अर्थ है कि प्रभु मैं सोया हुआ था। तो सोने के ऊपर थोड़ा नजर डालना चाहिए। सोने का अर्थ क्या होता है? सोने का एक अर्थ तो आपने समझ गया कि अपनी पहचान भूल जाना। जो जागृत है और अपनी पहचान भूला हुआ है, जो जागृत है फिर भी वह यह मानता है कि मैं आशीष हूं, मैं समीर हूं, अमित हूं, तो वह भी सोया हुआ है। यदि वह यह समझे कि मैं कृष्ण का दास हूं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का सेवक हूं, इसलिए उनकी भक्ति करना ही मेरा धर्म है, इस प्रकार से यदि वह जागृत अवस्था में सोचे तब वह जागा हुआ है, नहीं तो वह सोया हुआ है। और जब व्यक्ति सोता है तो बिल्कुल मरा हुआ की तरह पड़ा रहता है, खर्राटे लेता है, कितना भी जगाओ उठाओ पानी डालो फिर भी उठता नहीं, लगता है मर ही गया है, मरे जैसी अवस्था में हो जाता है। तो वास्तव में जो भजन नहीं करता है, ध्रुव महाराज अल्टीमेटली दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि वो मरा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छे शब्द में कहते हैं कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती है, जीवन शव समान सो प्राणी, उनका जीवन पशु के समान है। पशु तो बहुत अच्छा होता है, कम से कम जीवित तो है, परंतु जिन मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं है वो तो शव के समान है, मरे हुए मुर्दे के समान। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि भजन न करने वाला सोने के समान सोया हुआ है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि जागे उठे, दोनों प्रकार से जागे, अपने निज स्वरूप को भी जगाए, और रात को नींद भी कम करे, सुबह जल्दी जागे। जागने की बहुत महिमा है। सोने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, जागने वाला व्यक्ति ही जीवन में, यदि भौतिक जीवन में भी प्रगति करनी है तो जागना चाहिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि यह अंत प्रविश्य, प्रभु आप मेरे अंतकरण में प्रवेश करके मेरी वाणी को जगा दिए, और मेरी समस्त इंद्री, मेरे हाथ को, पांव को, आंख को, कान को, सबको आपने जगा दिया। तब आचार्य गण कहते हैं, भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को पूछा, ध्रुव ऐसा क्यों कह रहा है तू? तुझे पता नहीं है इस संसार में किसी भी मनुष्य की इंद्रियों को देवता चलाते हैं, आप सब जानते होंगे। जैसे मनुष्य की जो आंख जो है, इस आंख को चलाने वाले निमि महाराज हैं, देवता हैं, आंख के ऊपर बैठे हैं और वही आंख को चलाते हैं। हमारे मन को चलाने वाले चंद्रमा हैं, सोम। तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों को चलाने वाले अलग अलग देवता होते हैं। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हारी इंद्रियों को तो देवता चला रहे हैं, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं चला रहा हूं? तब ध्रुव महाराज कहते हैं, एकस्त्वम एक भगवन। प्रभु मेरी इंद्रियों को देवता नहीं चलाते हैं, मेरी इंद्रियों को तो एकस्त्वम आप ही चला रहे हो, आप ही मेरी इंद्रियों को चलाना। ये देवता लोग तो क्या इंद्रियों को चलाएंगे, वास्तव में कंट्रोलर नियम नियंता चलाने वाले प्रभु आप ही हो। अशेषम सृष्ट्वा अनुष्य पुरुष, आप ही संपूर्ण जगत को रचकर उसके अंतर्यामी रूप में प्रवेश करते हैं। अशेषम सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुष, देखिए ध्रुव महाराज अब कितना सुंदर ज्ञान भगवान को दे रहे हैं। प्रभु आप ऐसा कह रहे हो कि मेरी इंद्रियों को देवता चला रहे हैं, प्रभु मैं सब कुछ जानता हूं, इस संसार का निर्माण आप करते हो, आपके द्वारा यह संसार का निर्माण होता है और आप ही संसार में प्रवेश करते हो। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु आप पुरुष अवतार लेते हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही विष्णु हो, और आप पुरुष अवतार लेकर कारणोदकशाही रूप में कारण उदकशाही महाविष्णु के एक एक रोम से, एक एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। महाविष्णु के रोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और उस एक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु अपना दूसरा रूप लेकर गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और उस गर्भोदक साई विष्णु की नाभि कमल से, नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और वो ब्रह्मा, प्रभु आप कहते हो कि देवता लोग हमारी इंद्रियों को चलाते हैं, ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तब स्वयं को कैसे चलना यह भी नहीं पता था। प्रभु ब्रह्मा जी प्रकट होकर यह नहीं समझ सके मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है। ब्रह्मा जी ने बहुत बहुत ढूंढा कहां जाना है, क्या करना है, नहीं पता चला। अंत में तपह तपह शब्द का आवाज सुना और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने तपस्या की, प्रसन्न करने के लिए। तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर भगवान विष्णु ने अपनी बंसरी से, अपनी वेणु के नाद से तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, उस आदि कवि संसार के प्रथम जीव ब्रह्मा को भगवान ने डायरेक्ट हृदय में ज्ञान दे दिया। और ज्ञान देकर ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी अब आप, मैंने जो ज्ञान दिया है इस ज्ञान को लेकर इस संसार की सृष्टि का सर्जन करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सर्जन कैसे करूंगा, कुछ मटेरियल तो चाहिए। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पंच महाभूत जो मूल सृष्टि का रॉ मटेरियल प्रदान किया। तब जाकर ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि का सर्जन किया और सृष्टि में 84 लाख योनि के शरीर का सर्जन किया। 84 लाख योनि के शरीर बन गए, बहुत सुंदर, जैसे हमारा यह मनुष्य शरीर, कौवे का शरीर, गधे का शरीर, गीध का शरीर, हाथी का शरीर, ये ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, डिजाइन किया। शरीर निर्माण हो गया पंच महाभूत से, यह देह भी बन गया और देह बनने के बाद इसमें आत्मा को डाला गया अपने कर्म के अनुसार, आत्मा ये फिट हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी देखते हैं कि यह शरीर चल नहीं रहा है। तब ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बुलाया, सभी देवता यह शरीर की सभी इंद्रियों के ऊपर बैठ गए। निमि महाराज आंख ऊपर, सोम मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, सब लोग बैठ गए। फिर भी यह शरीर चलायमान नहीं हुआ, यह शरीर, यह जगत, यह पेड़ पौधे कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी भगवान के पास दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु आपने कहा था कि सृष्टि का सर्जन करो, सब कर दिया, पंच महाभूत से 84 लाख की योनि बना दी, पृथ्वी में सब डिजाइन कर दिया, उसमें आत्माएं भी आ गई, देवताएं भी आ गए, लेकिन कुछ चल नहीं रहा है। कैसे चलता, कितना सुंदर लाइट का फिटिंग किया हो, बहुत सुंदर लाइट लाए हैं, कलर लगाए हैं, लेकिन जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर न हो तब तक कैसे चलेगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु अपना एक दूसरा रूप लिए। देखिए तीन विष्णु है, पहले महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु, दूसरे विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु, अब तक दो ही विष्णु थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु अब संसार के लोगों को जीवित चलायमान करना है तो उसके लिए कुछ करो। तब गर्भोदक शाही विष्णु ने एक और रूप लिया जिसे शिरोदक शाही विष्णु कहते हैं। और वह शिरोदक शाही विष्णु सबसे पहले इस संसार के कण कण में प्रवेश किए और तत्पश्चात वह शिरोदक शाही विष्णु इस संसार के सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश किए। हमारे हृदय में जो परमात्मा हम कहते हैं ना, परमात्मा हमारे हृदय में है, ये और कोई नहीं, ये शिरोदक शाही विष्णु हमारे हृदय में बैठे हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु प्रवेश किए हृदय में तो ये सब कुछ चलायमान सब चालू हो गए। जैसे लाइट चली जाए, सब अंधेरा, पंखे, लाइट सब कुछ बंद हो जाए, शांत पड़ जाए। जैसे ही लाइट आ जाए और सब कुछ हल्ला मच जाता है, वैसे ही ये पूरा संसार एक साथ काम करने लगा। सब लोग अपनी धुन की में वो वहां पेड़ पौधे सब कुछ भगवान प्रवेश किए। तब तो ध्रुव महाराज याद करा रहे हैं, प्रभु आप कह रहे हो कि देवता लोग मेरी इंद्री को चला रहे हैं, परंतु अशेषम सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुष, आप परम पुरुष हो और देवता लोग क्या कर सकते हैं, आपकी शक्ति के बिना देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तत् असत गुणेशु विभासी कहते हैं। तो भगवान ने पूछा ध्रुव महाराज को कि हे ध्रुव, तुम कह रहे हो कि मेरी शक्ति के कारण मैं अंतकरण में प्रविष्ट हुआ, इसलिए यह इंद्रिया काम कर रही है। तो ध्रुव देखिए भगवान कैसा तर्क दे रहे हैं, भगवान और भक्तों के बीच में तो यह बहुत सुंदर वार्तालाप। एक पुराण में वर्णन है कि ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त हो गए, फिर अपने घर पर चले गए, राजा बन गए, तब ध्रुव और भगवान एक बार नदी में बैठे, नदी में एक नौका में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तो भक्त और भगवान में ये वार्तालाप होता है। भगवान ने कहा, ध्रुव तू कह रहा है कि मैं सबके अंतकरण में प्रविष्ट होकर सबके इंद्रियों को चला रहा हूं, यदि मैं सबके अंदर होता तो सबका रूप एक समान होता। मान लीजिए गीता में भगवान ने कहा है, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यह शरीर वस्त्र के समान है, यह शरीर की उपमा वस्त्र के साथ की गई है। शरीर यदि वस्त्र के समान है तो वस्त्र के अंदर जो बैठा है वैसा शेप इस वस्त्र का हो जाएगा। ये कुर्ता यदि नलिन प्रभु पहन ले तो इस कुर्ते का शेप नलिन प्रभु जैसा हो जाएगा। तो नलिन प्रभु ही ऐसा 10 कुर्ता पहनकर बैठे तो शेप 10 कुर्ता का सेम होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मैं सबके शरीर में हूं तो सबका रूप एक समान होना चाहिए, अलग अलग सब सबके थोबड़े क्यों हैं? किसी का हाइट छोटा, किसी का बड़ा हाइट, कोई गोरा कोई काला। यदि मैं सब में हूं तो ये तो कपड़ा है, ये शरीर तो कपड़े के समान है, तो मैं सब में हूं तो सब समान होने चाहिए, अलग अलग क्यों है? तब ध्रुव महाराज कहते हैं, सृष्टानु विषये पुरुष तस् गुणेषु नानेव दारुषु विभाव सुत विभासि। ध्रुव महाराज दृष्टान देते हैं, जैसे दारू, जैसे लकड़ी, लकड़ी में अग्नि लगती है, तो लकड़ी में अग्नि जब लगती है तो यह अग्नि देवता की कृपा से लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है। तो इस संसार में कई प्रकार की अलग अलग शेप की लकड़ियां होती हैं। तो अग्नि सभी लकड़ियों में एक लगती है। मान लीजिए यहां पर अग्नि लगी है और बोरीवली में अग्नि है, तो अग्नि सेम है, ठीक है, अग्नि सेम है, परंतु अलग अलग लकड़ियों में अग्नि लगने के कारण उस अग्नि का रूप भी अलग अलग हो जाता है। विरार में लगने वाली अग्नि जो उसका तत्व है, जो उसका स्वरूप है, यहां पर जो अग्नि लगती है वही अग्नि बोरीवली में लगती है। अग्नि ताप में कोई अंतर नहीं है, अग्नि सब जगह पर एक ही होती है, परंतु डिफरेंस होता है उसके आकार में। जहां पर अग्नि लगती है वो वस्तु जिस आकार की होती है अग्नि उस आकार की होती है। समझ में आ रही है? यहां पर एक छोटी सी दियासली में अग्नि लगी है और वहां पर किसी बिल्डिंग में अग्नि लगी है, दोनों में अग्नि है, अग्नि का रूप अग्नि का तत्व समान है, परंतु मात्रा हाइट दोनों में अलग अलग है, क्योंकि यहां पर दियासली में लगी है, वहां पर बिल्डिंग में लगी। ठीक उसी प्रकार सबके शरीर में भगवान है, अग्नि सब जगह पर है, भगवान सब जगह पर है, तत्व सब जगह पर है, परंतु उसका स्वरूप अलग है। ध्रुव महाराज जी समझा रहे हैं कि प्रभु आप सबके हृदय में हो, सबके हृदय में शक्ति दे रहे हो, परंतु लोगों के शरीर भेद होने के कारण, जैसे वह लकड़े के भेद होने के कारण उस अग्नि के रूप, अग्नि का रूप अलग अलग होता है, वैसे सबका शरीर का रूप, रंग, हाइट इत्यादि अलग अलग होता है। और प्रभु आप कह रहे हो कि देवता लोग शक्ति देते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान इदम आत्म शक्तिया, वास्तव में आप ही इस संसार में सभी जीवों को शक्ति देते हो, आप ही इस संसार में शक्तिमान। देखिए शक्तिया शब्द यहां पर आया है, इदम भगवान इदम आत्म शक्तिया, इस संसार में जितनी भी शक्ति है आपसे आती है। संसार में प्राय एक ऐसा संप्रदाय है, एक ऐसा मत है, वे कहते हैं शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ही सबका पालन करती है, शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए, शक्ति ही सब कुछ है। ये प्रकृति दृष्टांत भी देते हैं उस संप्रदाय में, कहते हैं जैसे टॉप, अच्छा टॉप इंग्लिश में टॉप कहते हैं और गुजराती में भमोड़ो कहते हैं, बीच की बात, बीच का गेर नहीं पता, जानता हूं तो ठीक है। तो ये लोग दृष्टांत देते हैं, जैसे उस टॉप को ऐसे घुमा देते हैं, छोड़ देते हैं और वैसे घूमता रहता है, वैसे शक्ति जो है वे घूमती रहती है। संसार में शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति की पूजा करो वही सब कुछ है। लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि शक्ति है ठीक है, परंतु शक्ति के पीछे शक्ति मान तो कोई होना चाहिए। शक्ति है लेकिन वह शक्ति किसकी है प्रश्न कर किया जाए। प्रकृति एक शक्ति है किसी की, परंतु किसकी है, क्या तुम्हारे दादा की है? शक्ति भगवान की है। ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान इदम आत्मशक्तिया, इस संसार में जितनी भी शक्ति है आपकी है, आपसे ही यह समस्त शक्ति प्राप्त होती है। और गीता में भगवान खड़े खड़े कहे अर्जुन मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, ये सूर्य चंद्र तारे ये जितनी भी प्रकृति है, जितनी भी शक्ति है ये मेरी है। संसार में पत्नी भी हमारी होती है, जैसे भगवान ने कहा कृष्ण ने कि यह समस्त प्रकृति मेरी है, तो कभी कभी हम भी कहते हैं ये पत्नी मेरी है, परंतु क्या वो पत्नी हमारी बात मानती है? हम 10 बार बोलते हैं तो 1 बार शायद वो कर दे। तो भगवान कहते हैं कि ये सारी शक्ति ये प्रकृति मेरी है, परंतु आपकी पत्नियों की तरह नहीं, 10 बार बोलने के बाद 1 बार काम करे नहीं। मया जक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरे आंख के इशारे से काम करती है, मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि ये करो ये करो, मेरी आंख देखकर ये शक्ति और प्रकृति समझ जाती है और वो काम करने लगती है। मई अधि अक्ष, अक्ष का होता है आंख और अधि का होता है अंडर में। भगवान ने दिखा दिया उस कुरुक्षेत्र की भूमि में कि किस प्रकार यह शक्ति मेरे अंडर में काम करती है। महाभारत में चलिए, अब बहुत तत्व हो गया, एक कथा सुन लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, कुछ लोग सो गए तो जाग जाइए। भगवान ने केवल कहा नहीं, दिखा दिया कुरुक्षेत्र की भूमि में कि किस प्रकार यह सारी प्रकृति मेरे इशारे से काम करती है। आपने सुना होगा महाभारत में का 18 दिन तक युद्ध हुआ, उस युद्ध में एक ऐसा पांडवों की ओर से वीर था जो पूरे कौरवों के 100 कौरवों को और कौरवों की सारी सेना को अकेला भारी पड़ गया, और वो था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु पांडवों में अभिमन्यु ही किस प्रकार से उस युद्ध के 7 चक्कर में जाया जाता है अभिमन्यु जानता था, और गया अभिमन्यु, और परंतु अभिमन्यु को खल करके सब लोग ने उसके साथ नीति को तोड़कर, और उसमें भी जयद्रथ ने अभिमन्यु को पीछे से वार करके मार डाला। जैसे अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल के दिन में सूर्य अस्त के पहले यदि मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध करने वाले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं स्वयं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। सूर्य ढलने से पहले मैं मेरे पुत्र के हत्यारे को मार डालूंगा। अब क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है यह कभी विफल नहीं जाती है, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा बहुत मजबूत होती है। दूसरा दिन सुबह हुआ और अर्जुन ढूंढने लगा, अर्जुन ढूंढने लगा कि जयद्रथ कहां है कहां है। जयद्रथ को पता चल गया कैसे भी करके कि कल के दिन में अर्जुन मुझे मारने वाला है और शाम तक मुझे मार डालेगा और यदि मैं नहीं मरूंगा तो अर्जुन स्वयं मर जाएगा। जयद्रथ ने सोचा कि यदि अर्जुन के सामने ही ना आऊं तो मैं भी बच जाऊंगा और अर्जुन भी मर जाएगा। एक तीर दो निशान, जयद्रथ ने सोचा कल के दिन मैं आऊंगा ही नहीं, युद्ध करने भूमि में ही नहीं आऊंगा। महाभारत में वर्णन है जयद्रथ उस दिन पाताल में जाकर एक लोहे की कोठड़ी में जाकर छिप गया जहां पर कोई उसे ढूंढ न सके। अर्जुन ने पूरे कुरुक्षेत्र की भूमि में घूम घूम कर देखा परंतु जयद्रथ नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अंत में सूर्यास्त, सूर्य ढलने लगा, अर्जुन ने सोच लिया कि अब तो जयद्रथ नहीं मिला, अब तो क्षत्रिय की प्रतिज्ञा आत्महत्या करनी। अर्जुन अपना गांडीर लेकर धनुष बाण चढ़ाकर अपनी ओर बाण जब मारने लगा, जयद्रथ ने सोचा कि अब तो सूर्यास्त हो गया है, मेरा शत्रु मेरा दुश्मन अर्जुन आज मरने जा रहा है और शत्रु के मरने के तमाशे को तो देखना चाहिए, इसे तो जश्न मनाना चाहिए, चलो जाकर देखे हमारा शत्रु कैसे मरता है। जयद्रथ उस लोहे की कोठड़ी से बाहर निकला, पाताल से यहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि में आया और कुरुक्षेत्र की भूमि में आकर अर्जुन आत्महत्या कर रहे थे, अपने ही बाण से स्वयं को मारने जा रहे थे। जयद्रथ आकर देखा कि शत्रु मरने जा रहा है, जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन मरने की तैयारी, मरने की अंतिम क्षण अंतिम घड़ी, सूर्यास्त हो चुका था। अर्जुन जैसे ही मरने गया उतने ही वही सेकंड में अचानक सहसा सूर्य देव सिर के ऊपर आ गए। दोपहर हो गई, अर्जुन को लगा कि संध्या हो गई है परंतु जैसे अर्जुन ने देखा तो दोपहर के 2 बजे। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा, कृष्ण ये क्या हुआ, ये तो अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया था, ये सूर्य कैसे उगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मया दक्षिण, पहले ही तो मैंने कहा कि यह प्रकृति मेरे इशारे से काम करती है, मैंने इशारा कर दिया, सूर्य कुछ देर के लिए ऊपर चला गया था, मेरे इशारे से बाहर आया। अर्जुन संध्या नहीं हुए, घड़ी में देख लो 2 बजे हैं, शत्रु तुम्हारे सामने है, गांडीव से मार डालो जयद्रथ को। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। निश्चित महाभारत के युद्ध में यह कंफर्म हुआ, कौरव और पांडवों की समस्त सेना ने देख लिया कि यह प्रकृति भगवान कृष्ण के इशारे से काम करती है, सूर्य चंद्र तारे भगवान के इशारे से चलते हैं। तो कहते हैं कि यह भगवत इदम आत्म शक्तिया, प्रभु आपकी शक्ति से ही यह संसार चल रहा है। आगे बढ़ना है कि ठीक है इतना, तो समय भी बहुत हो चुका है और बहुत आप बुद्धि को ज्यादा जोर दे चुके हैं हम। तो बस एक श्लोक का ही आस्वादन करते रहिए, घर पे जाकर पढ़िए, भागवत पढ़िए, बहुत सुंदर सिद्धांत है। वैसे मैंने सोचा था 3 श्लोक लूंगा लेकिन 3 श्लोक सुनकर ध्रुव महाराज खड़े हुए, हम सब लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा जाए, अगले प्रोग्राम में 2 लेंगे, तैयारी करके आइएगा। तो सार यही है, यो अंत प्रविष्टम है प्रभु, आप संसार के सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करके सभी जीवों की वाणी को जगाते हो, सभी जीवों की इंद्रियों को जगाते हो, परंतु आप वाणी और इंद्रियों, वही व्यक्ति की इंद्रियों और वाणी को जगाते हो जो आपका भजन करते हैं। और आप ही संसार में समस्त शक्तिधर हो, आप ही शक्तिमान हो, आप ही संसार में सबको शक्ति देने वाले हो, इसलिए प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।